हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 41। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परम् किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुण रुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे साङ्गपद कामोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न वेदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरां यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 41। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, तदिदं गाहयामास सुतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। 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 तदिदं गाहयामास तदिदं गाहयामास सुतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। शब्दों का अर्थ, तद् इदं गाह यामास। तद् मन उस, इदं यानी ये, ग्राह्यम आस अर्थात स्वीकार कराया, सूतम आत्मवाद आत्मवताम, सूतम अर्थात सूची के पुत्र उनके पुत्र को, सूतम यानी कि पुत्र को, आत्मवताम का मतलब होता है स्वरूप सिद्ध को, वरम यानी अत्यंत उदाहरणीय, सर्ववेदेतिहासानां सर्व माना समस्त, वेद अर्थात वैदिक साहित्य यानी ज्ञान या ग्रंथ जो होते हैं ना, वेद जितने भी होते हैं वैदिक साहित्य, इतिहासानां अर्थात समस्त इतिहासों का, सारम सारम समुद्रितम, सारम अर्थात सार या निष्कर्ष, सारम अर्थात सार उसका विसार, समुद्रितम अर्थात निकाला हुआ। अनुवाद, श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा जगत के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं समझते हैं। यह तथ्य नहीं है, पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत के परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि विभिन्न लोक सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य लोकों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस लोक के तथ्य से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों की विभिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में ना तो कोई विचित्रता दिखेगी ना ही वे काल्पनिक लगेंगे। हमें ये कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि किसी एक का भोजन दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था? श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुनकर ऐतिहासिक तथ्य का चरित्र चित्रण किया गया है, इसलिए समस्त आध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंधित हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं, और उन्होंने अपने पिताजी व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्री व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना नवनीत से की गई है। वैदिक वाङ्मय मानव ज्ञान का क्षीर समुद्र है। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट सार होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए, जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं होता। श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवतम का व्यापार नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था, इसलिए श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी के ऐसे प्रतिनिधि से ही ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का भोजन भोजाना हो। दूध सचमुच श्रेष्ठ है एवं पोषक भी होता है, किंतु जब कोई सर्प इसका स्पर्श करता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग कट्टर वैष्णव परंपरा में नहीं आते हैं, उन्हें ना तो भागवतम का व्यापार करना चाहिए और ना ही अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें अर्थात कृष्ण को जानना है, और श्रीमद् भागवतम तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है, अतः यह समस्त वेदों का नवनीत अर्थात सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हुए हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजना शाखया चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिवोपाद की जय हो। हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद से अध्याय का तीसरा अध्याय जिसका नाम क्या है, समस्त अवतारों के उत्कृष्ण यानी जितने भी अवतार हैं उनके स्रोत कौन है, कृष्ण ही है। तो श्रीमद् भागवतम के इस भाग को हम पढ़ रहे हैं और हमने श्लोक नंबर 39 में पढ़ा, अथि धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवी खिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रे। कि इस भौतिक जगत जो कि इतना भयानक जगत है, इसमें मनुष्य को कभी आनंद प्राप्त नहीं होता है और यदि कोई चाहता है कि आनंद की प्राप्ति हो तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, उसको भगवान की के विषय में जानना होगा। अति है धन्या भगवत तैत्थम यद वासुदेव, जो वासुदेव भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जो समस्त लोकों के नाथ हैं, उनके विषय में जानकर ही कुर्वन्ति सर्वात्मक आत्म भावम अर्थात कि 100% आपका कल्याण, आपको आनंद प्राप्त होगा। और दूसरी सबसे बड़ी गारंटी ये दी गई है, न यत्र भूयः परिवर्त उग्रे, कि इस भयानक संसार में आपको वापिस नहीं आना पड़ेगा। और उसके बाद अत्यंत सुंदर बताया श्लोक नंबर 40 में कि अगर आप भगवान के विषय में जानना चाहते हो तो उसके लिए एक ही सरल सुगम और परफेक्ट उपाय है। किससे जानना है आपको, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान शु निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। अर्थात अगर आपको भगवान के लिए भगवान को जानना है तो आपको और कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए एकमात्र श्रीमद् इदं भागवतम नाम, इदं का मतलब होता है ये भागवत महापुराण जो आपके हाथ में है जिसको आप श्रवण कर रहे हो, ये पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो है वो पूर्ण है और ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तो उत्तम श्लोक चरितम सकार भगवान ऋषि, क्योंकि साक्षात भगवान ने ऋषि वेद व्यास जी का अवतार लेकर इस श्रीमद् भागवतम को संकलन किया है और इसी से आपका परम कल्याण होगा और समस्त तरह की सफलता आनंद और परिपूर्णता यदि प्राप्त होगी अर्थात आपके जीवन का लक्ष्य यदि आपको प्राप्त होगा तो यह है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन और श्रवण करने से। एक बार ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने कहा था कि जब सारे मुगल ने सारे वेदों को ना खंडित कर दिया और सारे वेद समाप्त हो गए ना, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने कहा कि वेद अगर हमारे पास भागवतम है ना, जब तक हमारे पास भागवतम है तो कोई भी लॉस नहीं हो सकता हमारा। शास्त्र में कोई भी वेद कुछ भी समझो, हमारे पास सब कुछ है भागवतम के अंदर। अभी जैसे हम पढ़ते ना सारम सारम समुद्र, कि वास्तविक जो नवनीत है, जो क्रीम जो होती है ना, जैसे मक्खन होता है, वो है भागवत महापुराण। बाकी सब छाछ है, लेकिन मक्खन जो है जिससे खाने से बहुत ज्यादा पौष्टिकता भी मिलेगी और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी है। जैसे दूध की जैसे मलाई होती है, क्रीम होती है, उस तरह ये श्रीमद् भागवतम है। इतना सुस्वादु है और उसको ग्रहण करना एकदम सरल है, बहुत अत्यंत ही सरल है। तो इसे कहते हैं तदिदं ग्राहयामास। कि किसके द्वारा स्वीकार किया गया, अर्थात तद मतलब उस यानी यह जो श्रीमद् भागवतम है, तद इदम ये जो भागवतम है ग्राह्यम आवास स्वीकार किया गया है। किसके जरिए, सूतम आत्मवताम वरम। सूत कहते हैं पुत्र को, किसके पुत्र को, जो ऐसा पुत्र जो कि आत्मवताम यानी स्वरूप सिद्ध है, जो वरम है यानी अत्यंत उदाहरणीय है, सबके लिए सम्मान्य। अर्थात ये श्रीमद् भागवतम है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं ग्रहण कर सकता। इसको ग्रहण करने के लिए भी क्वालिटी, हम अक्सर बोलते हैं ना इस तरह कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए एक शुद्ध वक्ता की आवश्यकता है। हमें शुद्ध वक्ता अगर होगा, कोई शुद्ध भक्त भगवान का होगा, तो ही हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण को सुनाएगा, तभी हम उसके सार को समझ सकेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले वक्ता से पहले श्रोता की क्वालिटीज बताई गई हैं कि श्रोता को भी कोई ऐसा जो कि अभी इंद्रिय तृप्ति के जाल में फंसा हुआ है और है ना, जो अभी तक भगवान को नहीं समझ पाया है और अभी तक है ना आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए अभी तक उसने कोई तपस्या नहीं की है, जब तक उसने शास्त्र को समझने के लिए क्वालिफाई होना पड़ता है। जैसे आपको नाम जप करना पड़ता है, आपको सीरियस होना पड़ता है। ऐसे नहीं है कोई भी मुंह उठा के श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का योग्यता प्राप्त कर सकता। पहले भी हमने पढ़ा सद्यो रिद्य वरुद्यते तकृति भी। कृति भी का क्या मतलब होता है, पवित्र व्यक्ति द्वारा, यानी कि ये कोई है ना जो अपवित्र भावना रखते ना, ऐसे व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करके भी नहीं कर सकते। ये श्रीमद् भागवतम महापुराण पवित्र व्यक्तियों के लिए है। देखो वेदव्यास जी के कितने सारे शिष्य थे, लेकिन श्रीमद् भागवतम महापुराण जब उन्होंने लिखा तो किसी को भी नहीं पढ़ा दिया। वो ढूंढ रहे थे कि मुझे कोई ऐसा पात्र चाहिए, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान अब श्रीमद् भागवतम महापुराण का निर्माण तो कर लिया, लेकिन कोई तो इस योग्य हो जिसको पढ़ाया जाए, जिसको सिखाया जाए। अपने हजारों शिष्यों में उनको कोई भी ऐसा योग्य शिष्य नहीं लिखा जो कि भगवान से प्रेम के इस महापुराण को, इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए योग्य हो। तो फिर है ना उन्होंने बहुत भगवान से प्रार्थना की, तब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ और फिर तब उन्होंने कहा ये पुत्र नहीं, ये तो पात्र है, एक ऐसा पात्र है जिसमें मुझे श्रीमद् भागवतम महापुराण को उंडेलना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सूतम आत्मवात यानी स्वरूप सिद्ध को वरम, जो कि श्रीमद् वेदव्यास जी के पुत्र थे उनको बताया। और श्रीमद् भागवतम महापुराण में क्या बताया गया है, क्या बताया उसमें, क्या लिखा हुआ है, तो कहते हैं सर्व वेदे इतिहासाना। सर्व मतलब समस्त, यानी सर्व में जब बोला जाता है तब कुछ नहीं बचता, यानी कि पूरे का पूरा, क्या पूरा का पूरा, वेद, जितने भी वेदों में जो कुछ भी लिखा हुआ है। और सर्व वेदे इतिहासाना, इतिहास मतलब समस्त इतिहास। अब देखो इतिहास के दो मतलब होते हैं, एक तो काल्पनिक घटना को भी बोलते हैं कुछ लोग, ये समझते हैं कि जो इतिहास हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भी ऐसे काल्पनिक है। परंतु श्रीभूपाल जी ने तात्पर्य में बताया कि वेदव्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान का अवतार है और भगवान का अवतार अपने पुत्र को कोई साधारण जो काल्पनिक घटना सुनाए ऐसा नहीं हो सकता। वो जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वेदों में या जो शास्त्रों में या जो पुराणों में जो कुछ भी बताया गया है उसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है, ये सब सत्य का सत्य हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये वेद व्यास जी के द्वारा बताया गया है और इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दूसरे लोक जो होते हैं और इस लोक के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं, तो फिर कुछ चीजें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम छोटा सा पत्थर जब हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है, और इतने बड़े बड़े पत्थर रख के उन वानरों ने बंध कैसे बनाया, ये ब्रिज बनाया था ना जो, वो कैसे बना सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 दिन का बच्चा होगा वो इतनी बड़ी राक्षस को कैसे मार सकता है। अभी वो है ना 4 साल का बच्चा होगा या 2 साल का बच्चा होगा, वो इतने बड़े वृक्ष कैसे गिरा सकता है। मतलब समझ, हम क्या समझते, अपने लेवल से सोचते हैं। हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने लेवल से सोचते हैं, परंतु वो मनुष्य नहीं है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो तो भगवान है। और भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता, वो जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये पूरी प्रकृति उनके इशारे पर चलती है, तो उनके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हम श्रवण करते हैं शास्त्रों में, वो काल्पनिक नहीं है बल्कि वो अटल सत्य है। अगर सत्य न होता तो ऐसे क्यों कहते, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्य महत्, कि इसी को सुनने से आपका परम कल्याण होगा, आप धन्य हो जाओगे, पूर्णतः सफल हो जाओगे, सर्व आनंदमय हो जाओगे। कोई भी काल्पनिक कथा श्रवण करके किसी को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, किसी के अपराधों का क्षय नहीं होता, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से हमारे समस्त अपराध, हमारे जितने भी गुणों का तदा रजस तमो भाव, जितने भी रजोगुण तमोगुण और इत्यादि गुण हैं जिनके कारण हम अपराध करते, उन अपराधों की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सद्यो रुद्य वरुद्यते, भगवान जो है वो इंस्टेंट, अभी तक हम श्रवण करने की इच्छा करते हैं और भगवान हमारे हृदय के अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं, इससे बड़ा और क्या लाभ हो सकता है। और या किसी भौतिक इतिहास जो कि काल्पनिक हो उससे थोड़ा ना मिल सकता है, ये तो वास्तविक में भागवत महापुराण, क्योंकि भगवान जब संसार से जाने वाले थे तब उद्धव ने भगवान को कहा, नहीं कृष्ण तुम जाना नहीं, क्योंकि जब तुम यहाँ हो तो तुम्हारे होने से धर्म की रक्षा हो रही है, अपराध खत्म हो रहे हैं, और तुम्हारा नाम लेने से पुण्य मिल रहा है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है उससे पुण्य हो रहा है, लोगों के कितने सारे पुण्य उदय हो रहे हैं, तुम्हारा यहाँ होना ही सबके लिए कल्याणकारी है, तुम मत जाओ। तो भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन तुम मुझे इतना ही रुकने के लिए कह रहे हो तो मैं एक अलग स्वरूप में रुक सकता हूँ। तो देखते ही देखते उद्धव जी के भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर गए। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम की हमें पूजा करनी चाहिए, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीमद् भागवतम को बस एक लाइब्रेरी बना के रख दिया जाए और उसमें रोजाना से अगरबत्ती की जाए। पूजा का मतलब होता है एक एक शब्द को प्रेम करना है, एक एक शब्द को उच्चारण करने का प्रयास करना है, एक एक शब्द को समझने का, एक एक श्लोक को समझने का प्रयास करना है, और ये है श्रीमद् भागवतम की वास्तविक सेवा। क्योंकि यह श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, क्या है, सर्व वेद इतिहासान, जितने भी वेद हैं, जितने भी इतिहास हैं, उनका क्या है, सारम सारम समुद्रित, ये सार है, उनका निष्कर्ष है। वेद जितने भी हैं, वास्तव में वेदों को जानने का क्या मकसद है, भगवान बताते हैं 15.15 में, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदे वचाः, कि जितने भी वेद हैं उनका मकसद है मुझे जानना। भगवान को जानना ही वेदों का मकसद है, तो फिर ये श्रीमद् भागवतम तो साक्षात भगवान ही है। तो यानी कि अगर हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ के भगवान के साथ अपने संबंध को, ये संबंध ज्ञान है, कुतः संबंध अभिधेय और प्रयोजन, संबंध से हम भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हैं और केवल भागवतम महापुराण को पढ़कर ही हम भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण कर सकते हैं। और उस संबंध को जानने का क्या अभिधेय है, क्या कारण है, क्योंकि वही वास्तविक स्थिति है। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति तक पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, बस भौतिक अध्यात्म बुद्धि में अटक कर रह जाएंगे। और इसको जानने का प्रयोजन क्या है कि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करें। संबंध नहीं पता होगा तो फिर हम भगवान के प्रेम को कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे और ना ही उसको प्राप्त करने की इच्छा मन में होगी। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने से हमारा हृदय इतना पवित्र हो जाता है, हमें भगवान के साथ अपने संबंध का है ना ज्ञान हो जाता है और हम उस जगह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये क्योंकि श्रीमद् भागवतम में क्या है, सारम सारम समुद्रितम, समुद्रितम का मतलब होता है निकाला है। वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों को पहले लिखा और फिर सारे शास्त्रों में जो कुछ इम्पोर्टेंट था वो सब निकाला और फिर उसको उसके उनको निकाल कर उसमें से क्या बनाया, श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम समस्त वेद और इतिहासों का सार है। तो इसको पढ़ने से समस्त वेदों के अध्ययन का, समस्त इतिहासों के अध्ययन का प्रयोजन पूरा हो जाता है। यानी कि खाली अगर हम श्रीमद् भागवतम महापुराण को ही नियमित रूप से पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमें और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं किं वा परैरीश्वरे श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा है, तो फिर और किसी साहित्य को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों, सारम सारम समुद्रिता, क्योंकि वेदों में तो अनेक बातें लिखी हुई हैं जो कि आपको समझ में भी नहीं आएंगी। भगवान भी कहते हैं यामिमां पुष्पिता वाचम् प्रव्यजन्त्या विपश्यत, कि वेदों में तो बहुत ही अलंकारमयी भाषाएं हैं। इसलिए वेदों का जो सार है, सर्व वेदे इतिहासानां सारम सारम समुद्रितम, ये जो श्रीमद् भागवतम है वो समस्त वेदों का सार है और इसी को पढ़कर हम समस्त वेदों के अध्ययन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम महापुराण। महापुराण अर्थात किंग ऑफ द लिटरेचर, ग्रंथ राज, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, उनका राजा यदि कोई है तो श्रीमद् भागवतम महापुराण। इसलिए बोलते हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। और श्रील प्रभुपाल जी बताते हैं कि जितना भी वैदिक वाङ्मय, जो वैदिक ज्ञान है, वो समझो दूध का समुद्र, क्षीर समुद्र की तरह है। और दूध का समुद्र यानी ज्ञान, इसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान का क्षीर समुद्र है। और जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक विशिष्ट जो स्वादिष्ट सार होता है, और दूध का स्वादिष्ट सार क्या होता है, दूध का निष्कर्ष क्या होता है, मक्खन होता है, नवनीत होता है, उसी तरह श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत ही सुस्वादु उपदेशक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। अभी श्रीमद् भागवतम में जिस तरह दूध के मक्खन में बहुत ही स्वाद होता है और बहुत पौष्टिकता होती है, उस तरह श्रीमद् भागवतम में भी, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट भगवान के साथ उनके भक्तों का प्रेम संबंध बताया गया है, उनके भक्तों और भगवान की कार्यकलापों के विषय में बताया गया है, तो यह जो वर्णन होता है, ये जो भगवान के विषय की जो बातें होती हैं, वो सबके लिए कल्याणकारी है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सावधान किया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि अपना व्यवसाय चलाने के लिए पैसे धंधा चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए और जो धन अर्जित करने के लिए साधारण जनता से पैसे लूटने के लिए व्यापार करते हैं कि और पहले से ही फीस दे देते हैं भाई मैं यहाँ पर आके भागवतम की कथा करूंगा और उसके बदले में आपको मुझे 1 लाख रुपए देना होगा या फिर इन्हें इतने पैसे देने होंगे। तो श्रीला प्रभुपाल जी का कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद भागवतम का इस तरह से बिजनेस करना होता तो फिर वो भी क्या करते, सबको बता देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र को बताया खाली, क्योंकि वो जानते थे कि ये श्रीमद् भागवतम का जो वास्तविक अभिप्राय है, क्या वास्तविक अभिप्राय है कि इससे आपको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। लेकिन यदि बताने वाले के हृदय में प्रेम प्राप्ति के अतिरिक्त धन प्राप्ति की इच्छा है तो फिर वही वो जो श्रोता है उसके हृदय में भी वो है ना प्रेम प्राप्ति की इच्छा के अतिरिक्त और कोई इच्छा आ जाएगी, धन प्राप्ति की, मान प्राप्ति। कोई लोग को इच्छा होती है कि इससे मेरा सम्मान होगा, सब लोग मुझे है ना सम्मान प्रदान करेंगे और है ना कोई मेरी पूजा करेंगे, मुझे पगड़ी पहनाएंगे और है ना मेरी व्यास पूजा करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं ना। या फिर धन जिनको लालच होती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा धन मिले, तो फिर ऐसे श्रीला प्रभुपाद जी बोलते ऐसे लोग से सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। और श्रील सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम क्यों प्रदान किया गया, इसीलिए प्रदान किया गया क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवतम का व्यापार नहीं करना था, उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। भले ही जो सन्यासी होते, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला ना कि श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रंथ ग्रहण करना चाहिए जो सन्यास आश्रम में हो, यानी कि हमें ढूंढना चाहिए ऐसे सन्यासी को जिसके ऊपर परिवार का बोझ नहीं हो, क्योंकि फिर बोझ होगा परिवार का तो उसके मन में यही होगा ना कि लालच होगी, भले वो है ना नहीं मांगेगा लेकिन उसको एक लालच होगी, वो चाहेगा कि मुझे धन मिले, मुझे बुलाया गया है तो मुझे ना पैसे वैसे मिले ताकि मैं अपने परिवार को है ना पालूं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते फिर कोशिश करनी चाहिए सन्यासी से सुननी चाहिए या फिर ऐसे लोग से जिनको धन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर है ना वो क्योंकि फिर वो अगर बता रहे हैं अगर उनको धन और मान की इच्छा नहीं है तो फिर वो आपको जिस हृदय से पवित्र हृदय से बता रहे हैं तो आपके हृदय में भी पवित्र भावना उदय होगी और कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और श्रीला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर मिसाल बताई कि जैसे दूध जो होता है वो पौष्टिक भी होता है, उससे है ना आपको बहुत पावर मिलता है, लेकिन अगर कोई सर्प इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता बल्कि आपकी मृत्यु का कारण बन जाता है। उसी तरह से ये जो इच्छा है ना हमारे हृदय की सबसे बड़ी जो मलिनता है, जो हम बोलते हैं ना हृदय पवित्र नहीं है, हृदय पवित्र नहीं है, वो सबसे बड़ी मलिनता क्या है, इच्छा। और श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ने के लिए हम क्या सोचते हैं कि भाई इससे हमारा हृदय पवित्र होगा, लेकिन जो सुना रहा है उसका हृदय पवित्र नहीं है, इच्छाओं और कामनाओं से भरा हुआ, दुर्गंध आ रही है उसके उसके हृदय से अपनी इच्छाओं की या धन प्राप्ति की, तो जो कामना की जो ये दुर्गंध है वो दुर्गंध हमारे पास भी आ जाती है, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो इसलिए कहते हैं भगवान श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वही दूध श्रीमद् भागवतम महापुराण दूध है, लेकिन क्योंकि उसमें उसकी इच्छाओं की समिलता हो गई है इसलिए वो आपकी मृत्यु, आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बन जाएगा। आध्यात्मिक मृत्यु मतलब कि वास्तव में आध्यात्मिक में प्रवेश करने का क्या लाभ है कि आपकी भौतिक इच्छाओं का नाश हो जाए और आध्यात्मिक इच्छा का उदय हो। आध्यात्मिक इच्छा यानी कृष्ण से, हम जैसे शुरू शुरू में डेली पढ़ते हैं ना कि हम चाहते हैं, हम इसलिए मंगलाचरण कर रहे हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और यदि कोई वक्ता जिसके हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई इच्छा है, भले वो कृष्ण प्रेम को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर चुका लेकिन अगर उसके हृदय में कोई इच्छा भी बाकी है तो वो आपको जब अगर वो श्रीमद् भागवत महापुराण बताता है तो वो आपकी आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनता है, यानी फिर आपके हृदय के अंदर भी भगवान की प्राप्ति की इच्छा नहीं उत्पन्न होगी, कोई भौतिक इच्छा प्राप्त हो जाएगी। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के समस्त जितने भी कालों में जो ऐतिहासिक भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान के विषय में सब कुछ बताया गया है। इसीलिए बताया, समस्त इतिहासों का सार है, समस्त वेदों का सार है और हृदय के अंदर वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। लेकिन दोनों क्वालिफाइड होने चाहिए, श्रोता को भी क्वालिफाइड होना चाहिए और वक्ता को भी। तब तक जब तक हम दोनों, यानी कि श्रोता के हृदय के अंदर क्या होना चाहिए, केवल मैं कृष्ण को कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने कृष्ण के साथ अपने संबंध को निर्माण करना चाहता हूँ। कोई मैं अपने आप को प्रमोट करना चाहता हूँ, मेरी है ना बोलेंगे सबके, देखो इसको श्रीमद् भागवतम पढ़ना आ रहा है या श्रीमद् भागवतम के श्लोक उच्चारण कर, ये सब ये गंदगी हृदय से निकालनी पड़ेगी। और जब तक हम पवित्र हृदय से श्रवण नहीं करेंगे या पवित्र हृदय से जब तक हम बोलेंगे नहीं, वक्ता जब तक पवित्रता से नहीं बोलेगा और जब तक श्रोता पवित्र हृदय से निष्कपट भाव से नहीं श्रवण करेगा, तब तक हम इसका लाभ नहीं ले सकेंगे। इससे कहते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ने से पहले श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से हमें अपनी औकात याद आती है कि हमारी क्या औकात है, केवल भगवान के दास है, सब कुछ कृष्ण है। और जब सब कुछ कृष्ण है उसके विषय में सुनते तो फिर हमें ऐसा लगता है कि वैसे ही हमें पता चल जाता है हमारी औकात क्या है, तृण से भी हमारी उससे भी नीचे औकात है। कोई कोई लोग होते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ते हैं और है ना कथा करते हैं या फिर व्यास आसन पर बैठते हैं, उनके हृदय में इतनी गंदगी उभरी हुई होती है कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आए, मेरा सम्मान करे, मेरी जय जयकार करे, मुझे पगड़ियां पहनाए, मुझे ना बड़े बड़े हार पहनाए। और ये सम्मान की लालसा जिसके अंदर होगी ना, वो कभी भी हमें वास्तविक प्रेम प्रदान नहीं करा सकता है। बस लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वक्ता जो मतलब श्रोता है वो तो जरूर सम्मान करेंगे, लेकिन वो सम्मान करें भी तो भी है ना वक्ता के हृदय में नहीं होना चाहिए कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे है ना आदर मिलना चाहिए, मुझे धन मिलना चाहिए। लेकिन वक्ता जो श्रोता है उनका कर्तव्य है कि वो उनका है ना आदर करें, जो महान भक्त होते हैं भगवान के जो बताते हैं, लेकिन उन भक्तों को भी पवित्र होना चाहिए। यानी दोनों के अंदर एक ही इच्छा होनी चाहिए, क्या कि मैं इसको श्रवण करके और मैं इसको बोल के, खाली मेरा इसका करने का मकसद एक ही है कि मैं भगवान और गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहता हूँ। बस मेरे कृष्ण को प्रसन्नता होगी यदि कृष्ण के विषय में बोला जाएगा और मेरे गुरु महाराज को बहुत प्रसन्नता होगी जब वो ये सुनेंगे कि मैं कृष्ण के विषय में बोल रहा हूँ। बस ये अगर भाव है और मैं जो सुनने वाला है वो ये सोचेगा कि मैं कृष्ण के विषय में सुन रहा हूँ तो मेरे गुरु महाराज को कितना अच्छा लगेगा कि मैं भौतिक विषय में नहीं सुन रहा हूँ बल्कि कृष्ण के विषय में सुन रहा हूँ। और जब कृष्ण के विषय में सुन रहा हूँ तो कृष्ण को कितना अच्छा लगेगा कि कोई मेरे विषय में सुन रहा है, मेरी चर्चा, मेरे श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर रहा। तो सुनने वाले के मन में और सुनाने वाले के मन में यदि कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा है तब तो ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर जरा सी भी कोई और कामना आ जाती है तो यही भागवत महापुराण उसके आध्यात्मिक हत्या का, आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बन सकता है। तो हमें गुरु और गौरंग से सदैव ये प्रार्थना रखनी चाहिए, सदैव हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरु महाराज आप कृपा करिए, हमारे हृदय से कोई भी अगर कोई भौतिक इच्छा है उसका नाश कीजिए, हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करके एवं बोलकर केवल एक ही कार्य कर रहे हैं कि हम भगवान को और अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकें। गुरु और गौरंग की प्रसन्नता से हमारे हृदय में आनंद भर जाएगा, यही जीवन का लक्ष्य है। और श्रीमद् भागवत महापुराण को तो कब तक सुनना चाहिए, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाविक, जीवन पर्यंत उसको सुनना चाहिए, मरने के बाद भी इस बात की ख्वाहिश रखनी चाहिए कि मुझे श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करना है, मुझे भगवान के विषय में श्रवण करना है। और यही एक प्योर डिवोटी की एक ना प्योर डिवोटी को हम कैसे पहचानेंगे कि उसके हृदय में सदैव श्रवण करने की इच्छा होती है, सदैव भगवान के विषय में बोलने की इच्छा होती है, उसके हृदय में और कोई इच्छा नहीं होती है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे हृदय की ये तीव्र इच्छा सदैव श्रवण करने की और बोलने की, कृष्ण के विषय में बोलने की हमारे हृदय की ये इच्छा सदैव बढ़ती रहे और हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही ये कार्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।